केशमान प्रेमानंद से भरे, प्रेमानंद से भर करके हासी जशोदा सनय प्रसिद्ध सी बल्लभी राधिकेश। हम ये नहीं कर सकते कृष्ण, और उस कृष्ण प्रसन्न हमारे ऊपर भी हो सकते हैं, किंतु इतना प्रसन्न नहीं होंगे जितने कि गोपियों को आत्मसमर्पण करके उनके शरणागत हो जाते हैं, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए सौभाग्य मिलेगा किंतु गोपियों जैसा, गोपियां ही इसलिए कहते हैं भूर पुण्य पश्यंती सस्मित मुखम सदया वो लोग। इस अभिप्राय से वो कह रही है प्रातः ब्रजात श्री कृष्ण प्रभात काल में। प्रभात काल में मैंने कब, 9 बजे के करीब घर में जसोदा मैया के यहाँ से कलेवा करते हैं। श्रीमती राधिका जी कहाँ से जावट से आती हैं अपनी ललिता इत्यादि सखियों के साथ, और नंदगांव में ही रसोई बनाती हैं, और कृष्ण उसको ग्रहण करके क्षणिक भर में विश्राम करके और गोपियों से थोड़ा सा किसी प्रकार से बहाना लेकर के मिल करके और फिर वहां से गोचारण के लिए निकलते हैं। इसलिए प्रातः ब्रजात ब्रजतः श्री कृष्ण प्रभात काल में वेणु वादन करते 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 गौओं के पीछे लाखों लाखों सखाओं और लाखों लाखों गायों को लेकर के एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं ये वेणु गीत में बतलाया गया है। क्या अरे इतना ही अथनताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशु पशुन अनुविवेश यतो व्यस्य वक्त्रम ब्रजेश सुतो अनुवेणु जुष्टम जैवा निपीत अनुरक्त कटाक्ष। उनके दोनों के जुगलों के कटाक्ष मोक्षण माने एक दूसरे को राधिका जी कुंजों में और ये जा रहे हैं उसमें परस्पर के करुणा पूर्वक स्मित हास्य के साथ में दूसरों का जो अवलोकन हो इसको जो देखा उसका जीवन धन्य है। यही आंखों का चरम फल है आंख वालों का। उस समय में यहाँ पर बेणुनाथ श्रवण से झटती निज नहीं है अपने अपने गृहों से निकल आती है। कौन निकल आती है? अबला। अबला क्यों? क्योंकि सास ससुर ननद पति का डर है, पति के डर के मारे घर से नहीं निकल पाती, इसलिए अबला है। अबला इसलिए जब कृष्ण के वेणुनाथ को सुनती हैं तो धैर्य उनका धैर्य लज्जा और अपने इन गुरुजनों के प्रति जो डर इत्यादि होता है समझ जाने कहां बंसी ले लेती है, और उस समय कोई शक्ति इनमें मालूम नहीं है, बंसी की ध्वनि इनको एकदम पकड़ करके खींच करके कृष्ण के पास में ला जाती है, इनका अपना कोई बल नहीं है। इसलिए जैसे असहाय व्यक्ति को खींच ले जाए कोई, ऐसे बंसी ध्वनि इनको इन अबलाओं को इनका अपना बल तो कोई भी काम नहीं करता। यदि बल होता तो नहीं जाती, धैर्य बल होता, लज्जा का बल होता, उन गुरुजनों के डर का बल होता, कदापि नहीं। क्या निकलती हैं? अबला है ना, कोई शक्ति नहीं, वो बेणु तलात उनको ध्वनि उनको खींच करके कृष्ण के पास में, इसलिए अबला। इसलिए हो करके अबला पति पार्श्व में इनके सदैव दृष्टि हो गया, और हास्य युक्त मुखमंडल दो चीजें समस्मित मुखम सदयावलोकम। कृष्ण गोचारण जाते समय में मंद मंद मुस्कान से भरी करुणा पूर्वक दृष्टि से करुणा की वर्षा मने झटझट बरसी रहती है, और उनके तरफ में देखते हैं। किनके तरफ में? गोपियों की तरफ में देखते हैं। ये गोपियां इतनी सौभाग्यवती हैं अपने पर भी जो उनका दर्शन करती हैं, इसलिए महा भूरी पुण्यवती हैं, सौभाग्यवती हैं, अथवा स्वतंत्र ही ना शक्ति जो अर्थ हमने बतलाया, इतनी अबला है डर के मारे में घर में छिपी रहती, और सहिष्णु हैं, धैर्यवती हैं, लोग क्या कहेंगे इसलिए घर से नहीं निकलेंगी, किंतु बंसी उनको पकड़ करके अबला की भांति उनको जैसे कि ये दुशासन द्रौपदी को खींच करके लाई, ऐसे ही खींच करके ला देती है। और ये व्यक्ति क्या है, कृष्ण हमारे तरफ में सदैव हो करके करुणापूर्वक देख रहे हैं और स्मित हास्य से देख रहे हैं। कौन कह रहा है गोप, ये यहाँ की नारियां, किंतु यहाँ पर क्या देख रहे हैं इसके विपरीत। इसलिए गोपियों के सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं, अपने दुर्भाग्य का वर्णन कर रही हैं, ये दोनों चीजें यहाँ पर नहीं है। उस समय कृष्ण की भंगी कैसी होती है जब वन में जा रहे होते हैं, चरणों में रूपुन नुपुर की रुन झुनु शब्द होता है, और वो बंसी की ध्वनि से मिलकर के एक अपूर्व मनोहारी ध्वनि पैदा करती है। इतनी सुंदर रुन झुनु की आवाज शब्द मधुर ध्वनि, कणया तो अष्ट निशम्य वेद, नुपुर का कणन और बंसी का ध्वनि दोनों मिलकर के एक अपूर्व माधुरी उसमें होती है। उसको जो सुनेगा वो मुग्ध हो जाएगा। पशु लोग भी अपने धर्मों को विपरीत कर देते हैं, जड़ चेतन बन जाता है, चेतन अचेतन बन जाता है, चलने वाला स्थिर हो जाता है, स्थिर व्यक्ति जैसे जमुना चलने वाली स्थिर हो जाती है, और इससे पेड़ पौधे झुक जाते हैं, रस तपकाने लगते हैं, आकाश से मेघ से वर्षा होने लगती है, जड़ चेतन और पक्षी जो बोलते हैं वो चुपचाप एक तक से कृष्ण की तरफ में देखने लग जाते हैं, गायें चलने वाली स्तब्ध हो जाती हैं, हिरणे स्तब्ध होकर के उनके पास में जो डरने वाली हैं वो एकदम कृष्ण के पास में प्रणय की भिक्षा मांगने लगती हैं। तो गोपियां कहती हैं कास्यं ते कल्पदायत वेणुगीत सम्मोहिता आर्चरिता न चलेत त्रैलोक्यम सरलोक सौभगम इदंच निरुक्त रूपम जब गो द्रुम द्विज मृगा उल्कान। पेड़ों में भी पुलक हो जाती है, और जिनको पुलक होना चाहिए वो स्थिर हो जाते हैं, नदियां बहने वाली वो स्थिर हो जाती हैं, उल्टी धारा बहने लगती है। तो हम स्त्रियां स्वभाव से ही कोमल, आपके बंसी ध्वनि और आपके रूप को देखकर के आकर्षित होती है, इसमें हमारा दोष क्या है? यदि दोष है तो आपके इस रूप का, इस भिन्न ध्वनि का दोष है। ये जो अवर्णनीय चीजें हैं गोपियों के लिए, ये सब सुलभ है सहज रूप में। यहां पर दो चीजें, कृपा और स्मित। सस्मित माने मंद मंद मुस्कान के साथ में, और सदयावलोकन माने कृपा, कृपा पूर्वक देखना। दोनों चीजें कृष्ण की स्वाभाविक ये ब्रज में है, और यहां पर इसके बदले में हो गया क्या, कृपा के बदले में यहां पर क्रोध। कृपा का उल्टा है ना, कृपा होती है, और एक कृपा माने क्रोध। स्मित मंद मंद हास, यहां पर रोष भारी दृष्टि किसके, चारु मस्तु के प्रति, ऐसे दांतों से होठों को दबाकर ऐसा कर रहे, काम मंद स्मित चला गया। और जो सस्मित मुखम, उसके बदले में ऐसी दृष्टि आई, एकदम दांतों के तले धागा करके उसको और कृपा जी थी, उसके बदले में क्या हो गया, संहार की भावना, इसका संहार करना, ये हमको मारना चाहता है, इसलिए बर्फ को से लड़ने लगे। इसलिए ये कह रहे हैं यहां हम इन चीजों को देख रहे हैं उसके विपरीत। और गोपियां कैसी भावना के द्वारा पहले बतलाए, कहां उनकी भावना और कहां हमारा दुर्भाग्य और कहां उनका सौभाग्य। वही कृष्ण है, किंतु हमारा दुर्भाग्य है ये ऐसे कृष्ण के रूप को हम दर्शन नहीं कर सकते। ये गोपियों के लिए संभव है, हम लोगों के लिए दोनों चीजें नहीं है। क्या क्रोध में कृष्ण हो तभी नहीं, लड़ रहे हैं तभी नहीं, और गोपियों जैसे कृष्ण की तो बात ही क्या। हाँ, कभी कभी कल्पना कर सकते हैं यदि सौभाग्य है तो दोनों कुछ। इसलिए गोपियों यहां पर पुरुष स्त्रियों का बोलने का तात्पर्य यह है कि इस समय शत्रु का संहार करने के लिए संकल्प किए हुए बड़े रोष से और बड़े क्रोध से यहां देख रहे हैं, और गोपियों के यहां क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पर ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है। बड़े प्रेम के साथ में हंसते हुए बछड़ों और सखाओं के साथ में वन में चले जा रहे हैं और बिखेर रहे हैं अपनी मंद मुस्कान को और कृपा दृष्टि को। फिर कहते हैं सनातन गोस्वामी जी, हाँ ऐसा एक अर्थ तो हुआ, किंतु दूसरा भी अर्थ हो सकता है। दूसरा तो क्या होगा, इस समय भी उनके मंद मुस्कान मधु मुस्कान और कृपा वलोकन तिरोहित नहीं हुआ है, अर्थात तो उस समय भी युद्ध के समय भी जब चरण मुष्ट की स्तर से जब देखते हैं तो उधर तो ये हो जाती है, और जहां दूसरे तरफ में अपने सखाओं की तरफ में देखते हैं तो क्या होता है, मंद मुस्कान और इनके प्रति कैसा होगा, इनके प्रति क्रोध भरी दृष्टि नजर करेंगे
नहीं कर।
नंद बाबा भी बैठे हैं, वसुदेव जी भी बैठे हैं, देवकी भी बैठी है, तो उनके तरफ में क्या करेंगे, बालों को उचित मंद मुस्कान, किंतु वैसा नहीं जैसा ब्रज में। ब्रज में तो एक दूसरी प्रकार का भाव है, इसलिए इनका तिरोहित नहीं होगा, बल्कि ऐश्वर्य से, यहाँ पर ऐश्वर्य क्या है, रोष और संहार की बुद्धि। जब भक्तों की तरफ में दृष्टि करते हैं तो वैसा हो जाता है, किंतु उतना नहीं जितना कि ब्रज में ब्रज वनिताओं के प्रति होता है। इसलिए गोपियों की प्रशंसा और अपने दुर्भाग्य का ये वर्णन करते हुए हाय हाय कहती है, अथवा इनके साथ में कृष्ण का क्या संबंध है, क्या संबंध है, गोपियों जैसा संबंध है उपवर्ती का भाव रख सकती हैं, संभव पर नहीं हो सकता। इसलिए अपने संबंधों को देख करके हाय हमारे पति यदि सुन लिया तो गोपियों को तुम्हारी हाई है, क्योंकि वो वैसे ही जाती है, किंतु हमारे जादव में यदि देख लेगा कोई हमारा पति ससुर सास एक सेकंड के लिए नहीं, या तो गर्दन पर पड़ेगी तलवार और नहीं तो घर से निकाल देंगे एक क्षण के लिए, चाहे वो कृष्ण स्वयं बलदेव जी भी क्यों न हो, यहाँ मथुरा में नहीं, यहाँ पर मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन करना संभव नहीं। और ब्रज में वो प्रेम भूमि है, इसलिए तादृश माधुर्य मंडित श्री मुखमंडल दर्शन इस ब्रज में इस मथुरा में असंभव है। कृष्ण हमसे वैसे स्नेह की दृष्टि से नहीं देखेंगे, ये तुम हमारी प्रियतमा हो, यहाँ पर क्या देखेंगे, ये हमारी जेठानी है, हमारी भाभी है, हमारी भाई की पत्नी है, मर्यादा पूर्वक देखेंगे, कभी उस रूप में नहीं देख सकते। और वहां पर उनकी दृष्टि उन्मुक्त रूप से माधुर्य मंडित और परकीय भाव से उनके तरफ में देखे, इनके प्रति परकी की भावना संभव पर नहीं है, या तो मथुरा में या द्वारका में संभव नहीं। यदि कहो श्री कृष्ण ब्रज से वन में गमन करते हैं, उनके विच्छेद संबंध में क्या उनके दर्शन में भी ये बड़ी पुण्यवती हैं, उस समय कितनी रोती होंगी, जिसके लिए जितना सुख है मिलन में उसके लिए उतना ही दुख होगा विरह में, उस समय इनकी क्या स्थिति होगी, उस समय तो बड़ी हाय हाय करती होंगी, कहे हाँ करती तो हैं, उसी के लिए कहते हैं कृष्ण के चले जाने पर वो सारी दिन माल्य ग्रंथन और कृष्ण के लिए ये बनाना और दलों का दल अपने स्वजातीय भाव में रह करके कृष्ण के वनगमन और वहां गोचारण में क्या क्या स्थिति होती है, वेणुवाद वेणु गीत में जो कहा गया ऐसी भावना में तन्मय रहती है, दुख की खेद उपती उन समय होती है। यदि हम हिरण होकर के जन्म लेती हिरणों के समान प्रचंड गति से कृष्ण के एकदम निकट में जाकर के उनको प्रणय की दृष्टि से देखती, गायों का जो सौभाग्य है मुख में घास का लेकर के कवल भी उसे न तो खा पाती हैं और न निगल पाती हैं, ऐसे ही कान खड़े करके कृष्ण के बंसी की तरफ में खड़ी हो जाती हैं। उनके बच्चों की देखो और भी दूध उनके गले में अटका, न बाहर आता है न भीतर, एकदम एक भावना से आंख को बंद करके आंसू टपक रहे हैं और सुन रहे हैं, हम बछड़े होकर के जन्म ले लिए। इस तरह से वो गोपियां करती हैं। हम लोगों के लिए ऐसा संभव है? तो फिर वो पुण्यवती कैसे हुई? पुण्यवती इसलिए दिवा का विरह जो भाव है सायंकाल में आविशेषश्च सायं कृष्णाबाय, दूर बहुत दूर से सभी प्रतीक्षा कर रही हैं, ये गायों के खुर से उठी हुई धूल कब दिखाई पड़ेगी। 3 बजे से ही दिन के मध्याह्न के बाद ही अपराह्न से देखने में हठात देखा, बहुत दूर से आकाश मंडल धूल से परिव्याप्त हो गया और उसमें से गायों का हंबारो और मधुर बंसी की आवाज भी सुनाई पड़ने लग गई है। पाई उठे, इस तरह से घर से निकल पड़ी। उस समय किसी के मना करने पर भी वो नहीं मानेंगी, घर से निकल पड़ी। उसी के लिए बोलते हैं अब सायं कृष्ण इस प्रकार से गोपों के साथ में, गायों के साथ में जबकि शाम को आते हैं, उस समय में पुनः ईशत हास्य और कृपावलोकन के द्वारा उनके तरफ में देखते हैं, उनका सारा दुख दूर हो जाता है। कितना बच गया? 7-5 दूर हो जाता है। किंतु हमारे लिए क्या है? ऐसा दर्शन कभी भी संभव नहीं हो सकता है। एक तो उन्मुक्त कृष्ण का दर्शन और कृपावलोकन नहीं मिल सकता, यदि होगा भी तो हम लज्जा धैर्य इत्यादि को जलांजलि नहीं दे सकते। हम अबला नहीं है जो उनके रूप दर्शन से आकृष्ट होकर के सबको जलांजलि देकर के कृष्ण के चरणों में पहुंचे, इसलिए हमारे लिए संभव पर नहीं है। इसलिए ये गोपियां ही पुण्य पुण्यवती हैं, महासौभाग्यवती हैं। आज यही तक रहे वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यः।